पिछले राजयोग शिविर में हम सभी ने परमात्मा का सच्चा परिचय जाना। हम सभी के मन में अक्सर ये विचार उठता है कि परमात्मा आखिर कौन है, कहाँ रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी उषा बहन ने हमें 5 कसौटी दी, जिनके आधार पर हम आसानी से परमात्मा का सत्य परिचय जान सकते हैं। पहली कसौटी है, परमात्मा हम उसे ही कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, जो सर्वोच्च हो, अर्थात जिनका कोई मात पिता न हो। दूसरी कसौटी है, जो सर्वोपरि हो, अर्थात जो सर्व चक्रों से न्यारा हो, उपराम हो। तीसरी कसौटी है, जो सर्वोपरि हो, अर्थात जो सर्व चक्रों से न्यारा हो, उपराम हो। चौथी कसौटी है, जो सर्वज्ञ हो, अर्थात जो त्रिकालदर्शी हो। और पांचवी कसौटी है, हम परमात्मा उसे ही कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो। मान्यता है कि हम पुरुषार्थ करके परमात्मा बन सकते हैं, परंतु हमें बताया गया कि परमात्मा कोई डिग्री नहीं जो कोई भी हासिल कर ले। जिस प्रकार पंछी का पिता पंछी, जानवर का पिता जानवर होता है, उसी प्रकार हम आत्माओं का पिता भी परमात्मा है। सभी धर्मों में परमात्मा को ज्योति बिंदु रूप में याद किया जाता है। हिंदुओं में हम ज्योतिर्लिंग रूप में पूजते हैं, मुसलमानों में कहते हैं अल्लाह नूर है, सिख धर्म में कहा जाता है एक ओंकार निराकार, और ईसाई धर्म में परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज लाइट। परमात्मा का सर्वव्यापकता का सिद्धांत भावनात्मक रूप से सत्य है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सत्य नहीं है। आज के राजयोग शिविर में हम जानेंगे कि कैसे अपनी आत्मा की डोर परमात्मा से जोड़ें, अर्थात राजयोग के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे।
ओम शांति। आज का जो सत्र है, राजयोग का, शांति अनुभूति शिविर का सत्र, जिसमें अनुभूति के लिए आधार कौन से हैं और उसके विधि क्या है, क्योंकि मेडिटेशन की झलक तो हमने अवश्य हर सत्र के बाद की है, परंतु यथार्थ रूप में अभी तक भी ये शिकायत है कि मन भटक जाता है, मन लगता नहीं है। तो उसका आधार क्या है, कैसे मन को जोड़ ले परमात्मा में, तो ये राजयोग को कहा जाता है कि एक यात्रा है, ये मन की यात्रा है, और जहां मन को हमें ले चलना है, क्योंकि मन के लिए कभी कोई बंधन नहीं बन सकता, न समय न स्थान। लेकिन इस रूहानी यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में, एकदम से मन लग जाए ऐसा नहीं होता है, उसके कुछ कदम होते हैं। सीढ़ी जैसे व्यक्ति चढ़ता है, फिर मंजिल तक पहुंचता है, ठीक इसी प्रकार योग भी जब एक याद मना यात्रा है, तो उसके भी कदम है, और इस यात्रा के 3 कदम है। सबसे पहला कदम है जिसको हम कहते हैं कि ये एक भीतर की यात्रा है, अंतर की यात्रा है, और अंतर की यात्रा माना जो हमने पिछले 2 दिन में महसूस किया कि आत्मचिंतन कैसे करना होता है। जब तक आत्मचिंतन नहीं है तो सीधा परमात्मा में मन नहीं लगता है। पहले तो ये भूमिका बननी चाहिए कि जब हम अपने मन को आत्म स्थिति में स्थित करें, और आत्म स्थिति में तभी स्थित कर पाएंगे कि जब हम मन को आत्मचिंतन देंगे। आत्मचिंतन में कौन सी बातें हमें देनी है, तो जो आत्मा के सात गुण बताए, ये सातों गुणों का स्वरूप बनना और इन सातों गुणों में मन को स्थिर करना है। खाली सोच लेने से नहीं हो जाता है, लेकिन महसूस करना, वो गुणों को प्रवाहित करना। जितना हम ये गुणों को प्रवाहित होने देते हैं, उतना ही हम अपने आसपास एक ओरा तैयार करते हैं। क्योंकि जैसा चिंतन वैसा जीवन, तो चिंतन जैसे जैसे इंसान करता जाता, जिस क्वालिटी का चिंतन होता है, वैसे ही एक एनर्जी लेवल अपने आसपास तैयार करता है। तो मेडिटेशन के लिए बहुत शुद्ध प्रकार का एनर्जी लेवल हमें अपने आसपास तैयार करना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई विमान को भी उड़ना हो तो कुछ समय तक धरती पर उसको दौड़ाते हैं ताकि उसकी गति आ जाए। जब तक वो गति नहीं पकड़ता तब तक वो उड़ नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार अगर मन को भी हमें ये यात्रा पर ले चलना है, ईश्वर की ओर उसको उड़ाना है, तो उसके लिए भी कुछ समय हमें एक गति पकड़नी होती है। और आत्मचिंतन ये माध्यम है कि हम अपने बेस को तैयार करते हैं। मैं चाहती हूं कि मेरा मन उस परमात्मा के सानिध्य में जाए, लेकिन सबसे पहली बात कि मेरा मन शांत ही नहीं हो रहा है। मेरे मन के अंदर इतने कारोबार के विचार दौड़ रहे हैं, तो वो ईश्वर के तरफ कहां से जाएगा। जैसे वो एक कहानी है कि एक व्यक्ति रात में सोचा कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है, तो अपनी एक छोटी सी नाव में बैठा और सारी रात वो चलाता रहा, लेकिन लंगर उठाया ही नहीं था। तो सुबह देखा वहीं का वहीं है। जब तक लंगर को नहीं उठाए तो आगे बढ़ेगा कैसे। ठीक इसी प्रकार अगर हम अपने मन और बुद्धि का लंगर देह देहधारियों की बातें, देह के कारोबार की बातों में फंसा के रखेंगे, और फिर मैं सोचूं कि मैं अपने मन को परमात्मा की ओर ले चलूं, ये संभव नहीं है। इसलिए कुछ समय तक अपने मन को बाह्य सभी बातों से छुड़ाना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा। और जब बाह्य सभी बातों से हम उसको डिटैच करेंगे और फिर एक कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्थित करेंगे कि मैं ये देह नहीं, लेकिन इस देह में विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। और ये खाली सोचना नहीं है, लेकिन अंतर चक्षु से उसको देखना है। और जितना ये स्पष्ट दृश्य हमारे सामने है कि मैं एक प्रकाश पुंज, एक ज्योति पुंज आत्मा हूं। इसको आप महसूस करेंगे उतना हमारा देह और देहधारी देह के कारोबार से लंगर छूटेगा। इसीलिए तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भी यही कहा कि तुम स्वयं को आत्मनिश्चय करो। जब तक वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं देह समझ करके भगवान को याद करने का प्रयत्न कर रही हूं, तो कैसे ये कनेक्शन जुटेगा? इसलिए स्वयं को आत्मनिश्चय करके जब हम बैठते हैं, उसके बाद आत्मा के गुणों का चिंतन करना। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति घर के अंदर साधारण कॉन्शियसनेस में है तो हर काम करता रहता है, बगीचे में भी काम करेगा तो कोई और सफाई का काम भी अपने घर का होगा करेगा। लेकिन जिस वक्त वो सुबह तैयार होता है और मानो वो डॉक्टर है, उसको ये रटना नहीं पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, स्मृति में स्थित करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो तैयार होने लगता है हॉस्पिटल जाने के लिए, कि उसकी स्मृति में वो सहज ही आ गया कि मैं डॉक्टर हूं, कि उसकी स्मृति में वो सहज ही आ गया कि मैं डॉक्टर हूं, और उस वक्त उसको कौन याद आएगा? घर का कारोबार याद आएगा? बगीचा याद आएगा? नहीं। जैसे ही उसने अपने आप को तैयार करना शुरू किया कि उसको हॉस्पिटल याद आएगा, पेशेंट याद आएगा, दवाइयां याद आएगी, किस पेशेंट का ऑपरेशन है ये याद आएगा, तो जिस स्मृति में उसने अपने आप को स्थित किया कि मैं डॉक्टर हूं, तो उससे संबंधित सारी बातें याद आती है। उस वक्त उसको अपने बच्चे याद नहीं आते हैं, उस वक्त उसको बगीचा याद नहीं आता है, उससे उसकी बुद्धि समेट लिया उसने, और जहां उसको जाना है, जिस कार्य के लिए उसको जाना है, उससे संबंधित बातें स्वतः ही दिमाग के अंदर आने लगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बातें याद आती है, वो स्वरूप उनका बनता जाता है ऑफिशियल। और इसीलिए हॉस्पिटल पहुंचते ही वो अपने असिस्टेंटों के साथ कोई फालतू बातें नहीं करेगा, उसमें समय वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन जाते ही ऑफिशियल रूप में वो अपने कारोबार को आरंभ कर देगा। फलाने पेशेंट को ये दिया, राउंड पर चलाने जाता है, एक एक पेशेंट को क्या देना है क्या नहीं देना है, उस बात को फोकस करते हुए उसी हिसाब से वो दवाई ट्रीटमेंट आदि देना आरंभ कर देता है। तो उसके लिए उसको रटना नहीं पड़ता कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, नहीं, ये स्मृति में बात आ गई कि उससे संबंधित ही विचार उसके मन के अंदर चलना आरंभ हो जाते हैं। इसी प्रकार जब मैं आत्मा हूं, ये स्मृति में बात आ जाए तो उससे संबंधित ही विचार मन के अंदर आरंभ हो जाते कि मैं आत्मा कैसी हूं, मैं एक शुद्ध पवित्र हूं। तो उस स्वरूप में अपने आप को देखो, जैसे वो डॉक्टर वो पेशेंट को देखना चालू करता है अपने अंतर चक्षु से कि ये पेशेंट का आज ऑपरेशन है, ये पेशेंट की आज उसको ये ट्रीटमेंट देनी है, ये पेशेंट को आज डिस्चार्ज करना है, वो एक एक पेशेंट का चेहरा उसके सामने आने लगता है, उसमें कहीं गलती नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आत्मा हूं तो उससे संबंधित वो बातें मेरे स्वरूप के सामने आ जाती है कि आत्मा कैसी है, शुद्ध और पवित्र है, उसका स्वधर्म क्या है तो शांति है। रोज रोज मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं उस स्वरूप में अपने आप को अंतर चक्षु से देखती हूं तो वही स्वरूप मेरा स्पष्ट होता जाता है। और जैसे जैसे वो स्वरूप स्पष्ट होता जाता है तो वो संकल्पों के आधार से वो प्रकंपन मेरे आसपास फैलने लगते हैं और उस प्रकंपन के आधार पर एक कवच तैयार हो जाता है। वही मेरा कवच है जो मेरी वास्तविकता है। जब मैं देखती हूं कि मैं शांत स्वरूप हूं तो मेरे आसपास शांति के प्रकंपन, वो एनर्जी लेवल प्रवाहित होने लगता है, जिसको कहा एक ओरा। और उस ओरा में स्वयं को स्थित करके कुछ क्षण आप महसूस करो तो देखेंगे कि वो ओरा इतना पावरफुल हो जाएगा कि कभी कभी सारा दिन तक वो ओरा आपका रहता है और कई प्रकार की मुसीबतों से बच जाते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे जो डॉक्टर थे, सुबह रोज मेडिटेशन के लिए आते थे आश्रम पर। वैसे शहर में वो नामी ग्रामी इसलिए थे कि ये डॉक्टर बहुत गुस्से वाला है। सभी जानते थे कि थोड़ी भी कोई गलती वो सह नहीं सकता था, इतना उसको गुस्सा आ जाता था, इसलिए कई लोग उसे डरते थे। उसको खुद को भी मालूम था अपनी कमजोरी और इसीलिए किसी ने उसको कहा कि क्यों नहीं मेडिटेशन करके अपने स्वभाव को थोड़ा शांत बनाओ, थोड़ा वो शांति की शक्ति से अपने आप को चार्ज करो। हर रोज आने लगे आश्रम पर और रोज उसके मन के अंदर यही वो स्वयं को उस संकल्प में, उस स्वरूप में स्थित करता था कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म शांति है। जैसे जैसे ये चिंतन देना आरंभ किया उसके अंदर धीरे धीरे एक परिवर्तन आता था, लेकिन फिर भी उनका स्टाफ सब उनसे डरते थे, बहुत एक्यूरेट रहते थे हर बात में, लेकिन इंसान है, कभी तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। कोई एक इमरजेंसी पेशेंट आया और उस पेशेंट के तुरंत ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी। उस दिन मेडिटेशन जब किया और आश्रम से जब गया तो उस दिन पता नहीं उसके मन के अंदर क्या आया कि आज सारा दिन मुझे ये शांति के स्वरूप को ऐसा बनाना है कि मुझे बिल्कुल आज के दिन गुस्सा नहीं करना है। अब जिस दिन व्यक्ति संकल्प करता है उसी दिन परीक्षा आती है। तो जैसे ही वो इमरजेंसी केस आया और उसने अपने एक असिस्टेंट को कहा कि इसको इंजेक्शन लगाना है, वो नाम बोला इंजेक्शन का, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, और वो खुद ही हाजिर रहा उसको इंजेक्शन लगाने के लिए। असिस्टेंट ने नर्स को बोला, अब कहां कम्युनिकेशन गैप हो गया पता नहीं चला, तो जो इंजेक्शन उन्होंने कहा था उसके बदले उसने कुछ यह ठीक से सुना नहीं तो दूसरा इंजेक्शन भर के दे दिया। अब वो इमरजेंसी पेशेंट है, जैसे ही डॉक्टर ने हाथ में इंजेक्शन लिया और उसका कलर देखा कि उसको तुरंत अंदर में आया कि ये शायद गलत इंजेक्शन है। उसने तुरंत नर्स को बुलाया, कौन सा इंजेक्शन है, उसने बताया उस वक्त वो असिस्टेंट ने कहा, मैंने ये इंजेक्शन थोड़ी कहा, ये इंजेक्शन कहा था आपको। अब सब कांपने लगे कि आज तो डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा होंगे, इतने अंदर से कांपने लगे। लेकिन अच्छा हुआ कि वो इंजेक्शन लगाया नहीं था, उसी समय वो इंजेक्शन वहां छोड़ करके अपने आप दूसरा जो इंजेक्शन लगाना था लगा करके उसको लगा करके निकल गए, ऑपरेशन में चले गए। ऑपरेशन के बाद भी नर्सेस और वो असिस्टेंट डॉक्टर कांप रहे थे, आज तो हमारी छुट्टी हो जानी है। लेकिन बार बार वो अपने आप को ये स्मृति दे रहा था कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं और मेरे आसपास एक शांति का ओरा है, एक शांति की एनर्जी लेवल मैंने अपना तैयार किया है, इस एनर्जी लेवल को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, जब डॉक्टर साहब ने गुस्सा ही नहीं किया तो हिम्मत जुटाते असिस्टेंट डॉक्टर क्षमा मांगने आए कि माफ करना मुझे, लेकिन आज आपको गुस्सा कैसे नहीं आया ये मैं जानना चाहता हूं। तब उन्होंने उसको बिठाया और कहा, आज सुबह ही मैंने संकल्प किया था कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना है और आज ही मेरे सामने परीक्षा आई तो परीक्षा में तो पास होना पड़ेगा ना। तो देखा जाता कि जब इंसान अपने आप में जितना ये चिंतन के माध्यम से एक ऐसा एनर्जी लेवल, क्योंकि हर संकल्प में शक्ति है, तो वो शक्ति जितनी प्रकंपित होती है उतना सचमुच वो हमारे लिए कवच का कार्य करता है। और वो एक ऐसा कवच बन जाता है जो कई प्रकार की कठिनाइयां या कई प्रकार की समस्याओं से हम बच जाते हैं, ये कवच ऐसा है। तो ये प्रथम कदम है राजयोग का कि पहले चिंतन के माध्यम से वो स्वरूप अपना तैयार करना, ये भूमिका अपनी तैयार करना, जिससे हम एक गति पकड़ते हैं कि उसके बाद मन को इस शरीर से डिटैच करना आसान हो जाए। और फिर दूसरा कदम इस यात्रा का है कि ये परमधाम की यात्रा है, परमात्मा के धाम की ओर हम अपने मन को ले चलते हैं। जैसे ही मन सभी बातों से डिटैच हो गया, आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, तो उड़ान के लिए एक तैयारी हो गई और फिर हम अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के सानिध्य में ले चलते हैं और परमात्मा से वो शक्ति को प्राप्त करते हैं और अपने आप को सशक्त करते उस शक्ति से। अब ये बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मन के अंदर विचार चलता होगा, क्या सचमुच ऐसे शक्ति मिलती होगी, क्या सबूत है कि हमें शक्ति मिल रही है? जिस प्रकार आज की दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है, वो बैटरी को यूज करो वो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखो, एक स्रोत के साथ उसको जोड़ो और जो करंट मिलता है उससे वो बैटरी पुनः चार्ज हो जाती है। अब ये बैटरी डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? तो बताया जाता है कि इस बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जैसे बैटरी को यूज करो वो केमिकल कंपोनेंट्स अस्त व्यस्त हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। और जब संपूर्ण डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर उसको चार्जर में रखना पड़ता है और चार्जर में रख करके वो अपने आप चार्ज नहीं होती है, जब तक कि उसको स्रोत के साथ जोड़ो नहीं, कनेक्शन नहीं करो। और जब कनेक्शन किया वो करंट आता है, वो करंट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे वो करंट मिलता है तो उस करंट से वो केमिकल कंपोनेंट्स रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, सुव्यवस्थित हो जाते हैं। और जब संपूर्ण रीऑर्गेनाइजेशन हो गया तो बैटरी चार्ज हो गई। संपूर्ण रीऑर्गेनाइजेशन में कुछ घंटे जरूर लगते हैं, जैसे जैसे चार्जर की कैपेसिटी होती है। ठीक इसी प्रकार मेडिटेशन भी चार्जर है। और आज के युग के अंदर आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है। कैसे पता चला कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? तो हमारे भी भीतर के जो मैकेनिज्म है, जो भीतर के कंपोनेंट है, वो एक दूसरे के साथ सुव्यवस्थितता में चल नहीं रहे। मन के अंदर कभी कभी बहुत सुंदर विचार आते हैं, लेकिन भावनाएं कुछ और बह रही है, कुछ और कह रही है, तो वृत्ति कुछ और है, दृष्टि में कुछ और दिखाई दे रहा है, वाणी में कुछ और निकल रहा है, कर्म में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है, कहां भी सुसंवादिता नहीं है, कहां भी सुव्यवस्थितता नहीं है। और इसीलिए कभी कभी व्यक्ति अपने आप को ही समझ नहीं पाता है, कैसा क्यों हो रहा है, विचार तो मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, भावनाओं में पता नहीं एक रुखापन आ गया है, ये वाणी कुछ और निकल रही है, मनोवृत्ति में कुछ और बात है, तो कहीं पर भी सुसंवादिता ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और इसीलिए कई बार व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे वो बोल नहीं पाता है, वैसे वो कर नहीं पाता है, वैसी उसकी भावनाएं नहीं होती है, तो अंदर ही अंदर एक युद्ध चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और जब ये युद्ध चलता है तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। और इसलिए कभी कभी व्यक्ति कहता भी है, आज पता नहीं बहुत दुविधा वाली स्थिति है, करूं न करूं, मन तो कहता है ये करो लेकिन भावनाएं साथ नहीं दे रही है, वृत्ति कुछ और कह रही और दृष्टि में कुछ और दिखाई दे रहा है, कर्म मेरे कुछ और हो रहे हैं, गलतियों पर गलतियां हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और इसलिए जब इस प्रकार की सुव्यवस्थितता कहीं दिखाई नहीं देती है तो व्यक्ति अपने आप को भी समझ नहीं पाता है। मेडिटेशन ये चार्जर है, लेकिन मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि जब हम बैठेंगे तो हमको कुछ दिखाई देने लगेगा। कई लोग मेडिटेशन को गलत समझते हैं, सोचते हैं कि जैसे हम मेडिटेशन में बैठेंगे कहीं हमको भगवान की आकृति दिखाई देंगी, कहीं हमको ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा। मेडिटेशन माना कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमात्मा से शक्ति को प्राप्त करना है। उस स्रोत से अपने आप को जब जोड़ते हैं तो उससे शक्ति प्राप्त होती है। और शक्ति प्राप्त हो रही है उसका प्रमाण क्या? तो धीरे धीरे एक सुव्यवस्थितता अपने अंदर आने लगती है, हमारे मन की गति भी शांत होती है लेकिन सुव्यवस्थित है। जो फालतू की बातें हैं वो बातें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जहां हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, जो हमें भीतर से अस्वस्थ कर रहा था, वो बातें सब कटने लगती है और हमारे मन के विचारधारा अनेक दिशाओं में भटकने के बजाय एक सुव्यवस्थित ढंग से चलने लगती है। जैसा सोचते हैं वैसी हमारी भावनाएं उसको साथ देने लगती है, वैसी हमारी मनोवृत्ति बनने लगती है, वैसे ही हमारी दृष्टि और हमारे वाणी निकलने लगती है और वैसा ही हमारा कर्म और व्यवहार जीवन में होने लगता है। कहीं पर भी वो दुविधा वाली बात नहीं रहती, क्योंकि हर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ सुव्यवस्थित रीति से चलने लगते हैं, एक सुसंवादिता में आ जाते हैं, एक हार्मनी में आ जाते हैं, और उस वक्त हमें अपने जीवन में भी इतना सुकून मिलता है। तो ये सुकून कैसे मिला, ये जो दुविधा थी वो खत्म कैसे हुई, यही प्रमाण है कि परिवर्तन जो आया वो शक्ति मिली तभी ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। बैटरी जब डिस्चार्ज है तो कई प्रकार की कमजोरियों के वश है कि जब इंसान कह देता है कि मेरे अंदर और कोई कमजोरी नहीं, बस मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो गुस्सा आना ये कमजोरी है ना, तो बैटरी डिस्चार्ज हुई है ना, तभी तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है इंसान। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी ईर्ष्या आ रही है, कभी द्वेष आ रहा है, कभी कोई ऐसी उल्टी सीधी नेगेटिव भावनाएं आ रही है, तभी तो व्यक्ति अपने आप से कभी कभी परेशान होता है और उसमें फिर अपने काम की जो बातें हैं वो भूल जाने लगते, कहते पता नहीं ये भूलने की बीमारी कहां से आ गई, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती है, ये सब क्यों होता है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हुई। ये प्रमाण है कि बैटरी डिस्चार्ज है, तो जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है तो शक्ति आती है, तो वो कमजोरी दूर होती है। जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता था वो गुस्सा नहीं आता है, सहन शक्ति बढ़ने लगती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ने लगती, अपने काम की बातें याद आने लगती है, ये खुद भी महसूस करते हैं और हमारे आसपास जो होते हैं वो भी महसूस कर पाते हैं कि जब से उसने मेडिटेशन शुरू किया है ना, इसमें काफी परिवर्तन आया है, उसका स्वभाव शांत होता जा रहा है और उसके मन की एकाग्रता बढ़ने लगी, उसके अंदर एक स्थिरता आने लगी है, वो जो कार्य करते हैं एक्यूरेट करने लगे हैं, तो इसका मतलब भीतर के कंपोनेंट जो है सुव्यवस्थित होने लगे और इसलिए ये प्रत्यक्ष स्वरूप में ये बातें खुद भी महसूस करते हैं और दूसरे भी महसूस कर पाते हैं। ये परिवर्तन, ये प्रमाण है कि मुझे मेडिटेशन में शक्ति प्राप्त हुई है, नहीं तो व्यक्ति कितना भी कंट्रोल करना चाहे नहीं कर पाता है। शक्ति चाहिए उसको, कंट्रोल करने की भी एक शक्ति चाहिए, लेकिन कभी कभी ये परिवर्तन भी कई लोगों से हजम नहीं होता है। मुझे याद आता है कि भाई माउंट आबू आए, वहां जो हमारे राजयोग कैंप्स चलते हैं उस कैंप में आए थे, 3 दिन उसको बहुत अच्छा लगा उस कैंप में। वो अपना अनुभव सुना रहा था कि ये पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि 3 दिन तक उसको गुस्सा ही नहीं आया। तो उसने महसूस किया कि 3 दिन मैंने जो गुस्सा नहीं किया, मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है, आज मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मेरे गुस्से के कारण मेरे परिवार वाले भी कितने परेशान होते होंगे मेरे से, और मुझे अगर अच्छा लग रहा है, मैं अगर ये गुस्सा छोड़ दूं तो उनको भी तो अच्छा लगेगा। और इसीलिए मेडिटेशन करके जो उसने अपने आप में शक्ति महसूस की, तो उसने सोचा मैं ये रोज मेडिटेशन को कंटिन्यू करूंगा और यहां मैं जो है गुस्सा छोड़ के जाऊंगा। स्वाभाविक रीति से ऐसा हुआ कि जब आदरणीय दादी जी मिले दादी जी ने सहज भाव से ये पूछ लिया, क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या लेकर के जा रहे हो? तो उस भाई ने कह दिया कि यहां मैं गुस्सा छोड़ के जा रहा हूं और शांति यहां की लेकर जा रहा हूं, और मैं पुरुषार्थ करूंगा रोज मेडिटेशन करके कि मैं अभी ये गुस्से से खुद भी तंग था जो मैंने महसूस किया 3 दिन में, और पता नहीं मेरे परिवार वाले तो कितने तंग होते होंगे, तो उनको भी मैं अभी सुख देना चाहता हूं मेरे शांतिपूर्ण व्यवहार से। अब ये संकल्प करके वो वहां से चले, लेकिन उसने घर में जाकर किसी को बताया नहीं कि मैं ऐसा वहां संकल्प करके आया। अब ये परिवर्तन तो दिखाई देने लगा, तो पहले दिन ही अभी परिवार वालों को तो उसका गुस्सा सुनने की आदत पड़ी हुई है कि सुबह उठते ही एक छोटी बात को लेकर के भी उसका गुस्सा शुरू हो जाता है। तो पहले दिन बड़ा शांति से उठा, कोई चीजें नहीं भी मिली तो शांति से उसने मांगी, गुस्सा नहीं किया। तो परिवार वालों को वही क्या हो गया, इसको ठीक है या नहीं, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है, आज शांति से हर चीज मांग रहे हैं। अब उसने कुछ भी बताया नहीं, तो पहला दिन तो बहुत अच्छा गया, उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। दूसरे दिन उसके परिवार वाले थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, सारे दिन उसका गुस्सा नहीं सुनने को मिला, तो दूसरे दिन थोड़ा उसको इरिटेट करने के लिए भी प्रयत्न किया, लेकिन उसने मन ही मन अपने आप को ठीक कर लिया कि नहीं, मैं ओम शांति में जाकर के आया हूं, कम से कम कुछ दिन तक तो मेरे अंदर ये शांति रहनी ही चाहिए, इतना संयम तो मेरे अंदर रहना ही चाहिए। और इसलिए जब उसको कोई इरिटेट करने का प्रयत्न करता था तो भी अंदर ही अंदर वो कहता था ओम शांति ओम शांति, और अपने आप को शांत कर लेता था, ठीक कर लेता था। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ करके मेडिटेशन में बैठा, तीसरे दिन तो परिवार वाले और अस्वस्थ हो गए, पता नहीं ये सुबह सुबह उठ के क्या कर रहा है, ये ठीक है भी या नहीं है। अब जब 3 दिन हो गए गुस्सा वही नहीं, तो आखिर उसकी वाइफ आश्रम पर गई और बहनों को कहने लगी, ये आपने मेरे पति पर क्या जादू कर दिया, ये इतना शेर जैसा बकरी जैसे बन गया, रोज नहीं तो उसका दिन आरंभ होता ही है गुस्से से, और 3 दिन हो गए उसको गुस्सा नहीं आया। अब भाई गुस्सा नहीं आया तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे गृहस्थ में कितनी शांति हो गई, सुख हो गया। तो कहती नहीं, मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए, तो इतना डर गई कि पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारियों ने क्या जादू कर दिया। आखिर जब वो भाई को पता चला कि मेरे गुस्सा न करने से ये लोग इतने अस्वस्थ हो गए हैं, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं जो वहां गया था वहां इतना स्वर्ग जैसे शांति का अनुभव किया, और इसीलिए मैंने तो ऐसा संकल्प किया था कि शायद तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा परिवर्तन शायद आप लोगों को हजम नहीं हुआ, रास नहीं आया, ऐसा करता हूं कि अगली शिविर में आपको भी साथ लेके चलता हूं ताकि आप भी महसूस करो उसको। दूसरी शिविर में वो अपने वाइफ को लेकर के आया, जब उसने देखा कितनी शांति है, शांति से हर कारोबार चल सकता है, कितना स्वर्ग जैसा अनुभव होता है, तब उसको तसल्ली हुई कि नहीं, मेरा हस्बैंड जो है नॉर्मल है, वो एबनॉर्मल नहीं हो गया है। सोचने की बात है कि व्यक्ति जब गुस्सा करता है तब वो एबनॉर्मल कहलाता है, और जब गुस्सा नहीं करता है तो नॉर्मल कहलाता है, लेकिन दुनिया को उल्टे चश्मे जो है पड़े हुए कि व्यक्ति जब गुस्सा करता है तब लोग नॉर्मल समझते, और गुस्सा नहीं किया तो सोचते हुए नॉर्मल हो गया है। और इसी तरह का जब परिवर्तन इंसान के जीवन में आता है, हर बात में सुव्यवस्थितता आने लगती है, तो ये प्रमाण है कि मेडिटेशन द्वारा हमें शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये दूसरी स्टेज है, दूसरा कदम है। और तीसरा कदम है कि जब वो प्रकंपन को प्रवाहित करता है, और प्रकंपन को जितना वातावरण के अंदर प्रवाहित करता है उतना अनेकों को भी उसका अनुभव कराता है। भावार्थ ये है कि मेडिटेशन किया है, उसमें मुझे शक्ति मिली है, तो वो प्रकंपन प्रवाहित होने ही चाहिए। अगर वो प्रकंपन प्रवाहित नहीं हो रहे हैं और मेडिटेशन में से उठने के बाद तुरंत गुस्सा आ जाए, तो दुनिया में भी लोग कहते हैं इसने मेडिटेशन क्या किया, 5 मिनट में उसके अंदर शांति नहीं रहती है, 5 मिनट भी वो प्रकंपन प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, तो मेडिटेशन क्या कर रहा है। इसीलिए तो कई बार देखा जाता कि कई लोग जब पूजा पाठ करके उठते हैं और उठने के साथ ही कोई चीज नहीं मिली तो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तो आजकल के बच्चे भी क्या कहते हैं माँ बाप को, अब पूजा क्या कर रहे थे, पूजा में भी यही चल रहा था क्या? यानी अगर आपने पूजा की है, भगवान से प्रार्थना की है और आपके अंदर 5 मिनट भी शांति नहीं है, इतना आप अस्वस्थ अगर हो जाते हैं तो वो पूजा करने का मतलब क्या? ठीक इसी प्रकार अगर मेडिटेशन किया है और 5 मिनट में अगर वो प्रकंपन नहीं रहते हैं तो मेडिटेशन क्या किया? मेडिटेशन माना तो वो प्रवाह प्रवाहित होना ही चाहिए, और जितना अधिक सारे दिन में वो प्रवाह चलता है उतना समझा जाता कि हाँ इसने मेडिटेशन यथार्थ रूप में किया है, ये प्रमाण है। नहीं तो मेडिटेशन करता जाए इंसान और कोई प्राप्ति नहीं, अगर उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, तो मेडिटेशन नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति में बैठ के भी उसका मन इसका मतलब और बातों में ही भटक रहा है, वो मेडिटेशन नहीं कर रहा है। मेडिटेशन किया तो इसको दूसरों को भी अनुभव मिलना ही चाहिए, यह है प्रमाण। सिंपल शब्द में अगर कहे तो मेडिटेशन मतलब क्या? मेडिटेशन माना एक टेलीपैथिक कनेक्शन। ये जो तार, मन के तार जोड़ने की बात जो हम कर रहे हैं ईश्वर के साथ, ये तार कोई दिखने वाला तार नहीं है, लेकिन ये टेलीपैथिक कनेक्शन है। जो आपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति को आप सुबह से याद कर रहे हो और मान लो कि थोड़ी देर में ही उस व्यक्ति का फोन आता है और वो आपसे बात करता है, तो उस वक्त आपको अंदर में यही लगता है अरे मैंने इस व्यक्ति को याद किया और इतना तुरंत उसका फोन आ गया। आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है कि ये कैसी बात है कि हम मन ही मन उसको याद कर रहे हैं और उसका फोन आ गया। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आपने फोन कैसे किया तो यही कहेगा कि बस आपकी याद आ गई, सोचा आपसे बात कर लूं। और उस वक्त अंदर में यही लगता है कि अरे ये कैसे हुआ, या वो व्यक्ति सामने आ जाता है और आप कहते हैं अब भी आपको याद कर रहे थे, देखो और कैसे आप आ गए, उसको पूछो आप कैसे आ गए, कोई काम से आए तो कहेंगे नहीं कोई काम नहीं था, सोचा यहां से गुजर रहा था यहां आ जाता हूं। लेकिन ये संभव तभी होता है कि जब वो दोनों व्यक्तियों की मेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग हो जाता है। और जब वो मेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग हो गया तो ये अनुभव प्रत्यक्ष में होता है। और ये अनुभव आपने कई बार कई व्यक्तियों के साथ किए होंगे कि आप उसको याद कर रहे हो और वो व्यक्ति सामने आ जाता है या वो व्यक्ति फोन कर लेता है और उस वक्त आपको इतनी खुशी होती है कि अरे नहीं तो कहाँ ढूंढते थे, हम तो यही सोच रहे थे कि इसको कहाँ कांटेक्ट करें, कैसे कांटेक्ट करें, और आपने तो एकदम सामने से फोन कर लिया। सोचो यही अनुभव अगर ईश्वर के साथ हो तो क्या मनी मन उससे याद कर रहे हो और जो आप सोच रहे हो वो सामने होते हुए दिखाई देवे, तो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर भी हमारे हर मन की बात को सुन रहा है और उसका प्रत्युत्तर दे रहा है। लेकिन वो संभव तब होगा, कभी कभी अपने इत्तफाक से ऐसा अनुभव अवश्य किया होगा, लेकिन अगर ये अनुभव निरंतर हो उसके लिए क्या करें? क्या मनी मन उससे बात करो और वो आपकी हर बात को सुन रहा हो और उसका प्रत्युत्तर दे रहा हो, कितनी खुशी होगी। इंसान आपके याद का प्रत्युत्तर देता है तो कितनी खुशी होती है। सोचो भगवान आपके याद का प्रत्युत्तर दे तो कितनी खुशी होती है। यही मेडिटेशन। लेकिन ये अनुभव संभव तब है जब या तो उसको मेरे मानसिक स्तर तक आना पड़े, तभी ट्यूनिंग हो सकता है, या मुझे अपनी मानसिकता को ऊपर उठाना पड़े उसके स्तर तक, तभी ये ट्यूनिंग संभव है। और ये हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता। अब वो मेरे स्तर तक आए ये संभव नहीं है, मुझे ही अपनी मानसिक स्तर को ऊपर उठाना होगा उसके स्तर तक, ताकि ये कनेक्शन सहज हो जाए, ये ट्यूनिंग सहज हो जाए। और ऊपर उठाना माना क्या? तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह अभिमान है, ये देह अभिमान से अपने मन और बुद्धि को ऊपर उठाना, स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित करना। इसीलिए कहा कि आत्म स्थिति ये बेस बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब देह अभिमान में होता है तो कैसे पता चलता है? कई बार हम किसी को देख करके कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है, कैसे पता चला कि ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है? उसके बोल चाल व्यवहार उसमें क्या होता है? रफनेस होती है, स्मूथनेस नहीं होती है। बोल चाल में गुस्सा होगा या चिड़चिड़ापन होगा, तो जब वो ईर्ष्या द्वेष किसी के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा हो तो कहेंगे उसको अपना अभिमान इतना है जो दूसरे की अच्छाई तो वो देख ही नहीं पाता है। तो जब नेगेटिव बातें आ जाती है स्वभाव के अंदर तो हम कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है, बॉडी कॉन्शियसनेस में। तो आत्मस्थिति में स्थित है उसका प्रमाण क्या? आत्मस्थिति में स्थित होना माना हमारे बोल चाल व्यवहार आदि सब में वो आत्मा के साथ गुण प्रवाहित हो रहे हैं, शांति आनंद प्रेम सुख शुद्धि ज्ञान, ये जब प्रवाहित हो रहा होता है तो कहते ये व्यक्ति तो जैसे अल्लाह लोग है, दिव्य है, आज की दुनिया का इंसान जैसा नहीं लग रहा है, कोई फरिश्ता लग रहा है, ऐसे टाइटल देने लगते हैं। तो आत्मस्थिति में जितना हम सारा दिन स्थित करेंगे अपने मन को, और वो गुण नित्य नेचुरल रूप से प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये है आत्मस्थिति, ये बेस है यानी मानसिकता को ऊपर उठाया है उसके स्तर तक। कोई भी दो वायर का कनेक्शन करना हो तो दोनों का रबर उतारने की आवश्यकता है, उसके बाद ही वायर जुड़ सकता है और तब करंट पास हो सकती है। तब तक करंट पास नहीं, एक का रबर उतारा हो एक का रबर न उतारा हो तो करंट पास होगी? कभी नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार परमात्मा को कोई आवरण नहीं है, कोई रबर नहीं है। और हम इंसानों को कितने आवरण चढ़े हुए हैं, देह के, संबंधों के, पदार्थों के कितने आवरण चढ़े हुए हैं। सबसे बड़ा रबर तो यही देह अभिमान का चढ़ा हुआ है। तो ये देह अभिमान का रबर उतारना माना स्वयं को आत्मनिश्चय करना। और जब ये रबर उतारते हैं तो उसके बाद कौन याद आएगा, वो परमात्मा की ही स्मृति स्वाभाविक रीति से आ जाती है। और तब हमारा ये ट्यूनिंग उस परमात्मा के साथ बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। और तब हर बात का संकेत हम भी उसका सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और वैसा कर सकते हैं, और वो भी हमारे मन की हर बात को सुन सकता है, समझ सकता है। कई बार आपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि ईश्वर ने कोई संकेत दिया और आपका मन अगर रिलैक्स स्टेज में है तो उस संकेत को आप समझ सकते हैं आभास के रूप में, और आप बाद में महसूस भी करते हैं कि सुबह सुबह आज मुझे ऐसा आभास हुआ था, लेकिन उसको समझ नहीं पाए थे। जब वो घटना घटती है उस वक्त महसूस होता है कि ईश्वर भी जैसे मुझे कुछ संकेत दे रहा था लेकिन मैंने उसको समझा ही नहीं। तो ये टेलीपैथिक कनेक्शन दोनों तरफ संभव है, और उस वक्त इतनी खुशी होगी कि जिसका पारावार नहीं, कि जैसे ईश्वर भी मेरे हर मन की बात को सुन रहा है। और जितना ही अभ्यास करेंगे उतना उसके हर संकेतों को भी समझना आसान हो जाएगा, और वो बहुत सुंदर अनुभव है। लेकिन उसके लिए कुछ आधार अवश्य है, इंसान की याद के भी कुछ आधार है, बिना आधार के संबंध नहीं होता है, बिना आधार के आप एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते। तो वो आधार कौन से हैं? रास्ते में आप चल रहे हैं, आपको हजारों व्यक्ति मिलते हैं, हर एक को थोड़ी याद करते हैं, किसको याद करते हैं, किस आधार पर याद करते हैं? तो इंसान को याद करने के चार आधार हैं। सबसे पहला आधार है परिचय, जहां जिसके साथ आपका थोड़ा बहुत भी परिचय होगा उसी को याद करेंगे, बिना परिचय के आप याद नहीं करेंगे। जब तक आपको ब्रह्मा कुमारी का परिचय ही नहीं था आपने कभी याद नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपको परिचय प्राप्त हुआ आपने सोचा चलो जाए तो सही, देखे तो सही, तो तभी तो याद किया। दूसरा आधार है संबंध, जहां जिसके साथ थोड़ा बहुत संबंध होता है तो संबंध के आधार पर उसको याद करते हैं। तीसरा आधार है स्नेह, प्यार, स्नेहियों को हम याद करते हैं, जहां जिसके साथ हमारा प्यार है उसको हम याद करते हैं। और चौथा आधार है प्राप्ति, जहां से कुछ मिलने वाला हो, कुछ प्राप्ति होने वाली हो उसको याद किया जाता है। तो इंसान को याद करने के ये चार आधार है, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। ये चार आधार पर चार प्रकार की यादें हैं। यादें भी अलग अलग होती है। जहां सिर्फ परिचय है वहां याद कैसी होगी, वहां मेहनत करनी पड़ती है याद करने की। आज मान लो कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो और हमें हर परिचित व्यक्ति को बुलाना है, तो हम एक एक को बैठ के याद करेंगे, मेहनत करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे ताकि कोई भी छूट न जाए, और एक एक को याद करके उसको इनविटेशन भेजेंगे। तो जहां सिर्फ परिचय है वहां याद भी कैसी है, मेहनत करना पड़ता है। जहां संबंध है वहां याद कैसी है। आज एक मां का बच्चे के साथ संबंध है। मान लो कि बच्चा कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा हो और वहां से खबर आ जाए कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मां को क्या होगा? वो बच्चे का सताएगी, खाना बना रही होगी, याद किसकी होगी? बच्चे की। वो क्या खा रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, ध्यान रख रहा होगा नहीं रख रहा होगा, दवाई ठीक लेता होगा नहीं लेता होगा, कितने विचार चलते हैं। कभी कभी तो इतनी बच्चे की याद सताती है कि रात को नींद भी उड़ जाती है, सारी रात नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं। मान लो कि दूसरे दिन बच्चे का फोन आ जाए कि नहीं अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप चिंता नहीं करना, तो भी मां क्या कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है? कहती है बेटा आवाज ठीक नहीं लग रहा है तेरा, उसका हृदय का तार जुड़ा है ना, वो समझ सकती है कि मैं चिंता न करूं इसलिए ये मुझे कह रहा है, बाकी इसका आवाज अभी तक ठीक नहीं लग रहा है। आखिर उसको मन के अंदर होता है मैं एक बार जाती हूं उसको देख के आती हूं, तब उसको जाके शांति होती है। तो जहां संबंध है वहां याद भी कैसी है, सताने वाली याद। जहां स्नेह है प्यार है वहां याद कैसी होती है,